जो तपता है वो पकता है। एस्टरिस्क द 10th ऑफ अगस्त को युगदृष्टा जनाचार्य श्री ज्ञान चंद्र जी महाराज साहब ने जैन स्थानक गुडमंडी में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया कि जो तपता नहीं वो पकता नहीं। आम पकता है, तपने के बाद रोटी पकती है, तपने के बाद सोना चमकता है, तपने के बाद आत्मा परमात्मा बनती है, तपने के बाद। जैन धर्म में अनशन तप का बहुत महत्व है। अन्न के त्याग के साथ काम, क्रोध, मद, मोह से भी दूर हटने की बात कही गई है। इसलिए तप, द्रव्य और भाव दो प्रकार से होता है। द्रव्य से तो अन्न का त्याग जो दिखाई देता है, भाव से वैर विरोध को छोड़ना, यही महत्वपूर्ण है। हमारी आत्मा पर विभावों का, विकारों का जो बुरा असर आ रहा है, उसको हटाना भी तप है। तीर्थंकर अनशन तप के साथ कायोत्सर्ग भी किया करते थे। अपनी आत्मा को देखना, परखना, निरखना इस ढंग से करते कि उनके कर्म धुलते चले जाते। व्यवहारिक जीवन में भी देखा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को गौर से 1 मिनट भी देखो तो उसमें रिएक्शन होने लगता है। तो जब हम आत्मा को ध्यान से देखेंगे तो उसमें परिष्करण होता चला जाएगा। आपके साथ अंतर्दृष्टा बनकर परम सिद्धि को पाया जाता है। भगवान महावीर ने उपदेश के पहले अपनी तप साधना एवं चर्या के द्वारा भी तरह तरह का उपदेश जनता को दिया है। तापस आश्रम से विहार करके भगवान अस्थिक ग्राम पधारे। संध्याकाल होने आया था। भगवान ने वहां के निवासियों से स्थान की याचना की। लोगों ने कहा, यहां एक यक्ष का मंदिर है, परंतु यह यक्ष बड़ा क्रूर है, अपने स्थान पर किसी को रहने नहीं देता। इस यक्ष की क्रूरता उसके पूर्वभव की एक दुर्घटना से संबंधित है। इस स्थान पर पहले वर्धमान नाम का एक गांव था। निकट ही वेगवती नामक एक नदी है जो कीचड़ से युक्त है। एक बार धनदेव नाम का व्यापारी 500 गाड़ियों में किराना भरकर ले जा रहा था। गाड़ियों के बैलों में एक बड़ा वृषभ था। इस वृषभ को आगे जोड़कर सभी गाड़ियों को नदी से पार उतार दिया। तिभार को कीचड़युक्त स्थान से खींचकर पार लगाने में वृषभ की शक्ति टूट गई। उसके मुंह से रक्त गिरने लगा, शरीर निःसत्व हो गया। वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। व्यापारी हताश हो गया। वो वृषभ उसका प्रिय था। उसने ग्रामवासियों को एकत्रित करके कहा, यह बैल मुझे अत्यंत प्रिय है, परंतु अब यह चलने योग्य नहीं रहा। मैं स्वयं भी यहाँ इसकी सेवा के लिए रह नहीं सकता। मैं आपको इसके घास और दाना पानी आदि सेवा के लिए पर्याप्त धन दे रहा हूँ। आप लोग इसकी सभी प्रकार से सेवा करेंगे। धनदेव ने उन्हें खर्च के अनुमान से भी अधिक धन दिया। लोगों ने भी प्रसन्न होकर सेवा करने का विश्वास दिलाया। उसने स्वयं भी बहुत सा घास और दाना पानी उस वृषभ के निकट रखवा दिया। फिर अपने प्रिय वृषभ के शरीर पर हाथ फिराकर आंखों से आंसू टपकाता हुआ धनदेव आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद ग्राम्यजनों ने सब धन दबा लिया और उस रोगी बैल की सर्वथा उपेक्षा कर दी। कुछ काल पश्चात वो वृषभ भूख प्यास से तड़पने लगा। उसके शरीर का रक्त मांस सूख गया और वो मात्र चमड़ी और हड्डियों का ढांचा ही रह गया। वृषभ ने विचार किया, इस गांव के लोग कितने स्वार्थी और अधम हैं। ये पापी, निष्ठुर, निर्दय लोग चांडाल जैसे हैं। मेरे स्वामी ने मेरे लिए दिया हुआ धन भी ठग खा गए और मुझे तड़पता हुआ छोड़ दिया। इस प्रकार ग्राम्यजनों पर क्रोध करता हुआ अत्यंत दुहक पूर्वक अकौम निर्जरा करके मृत्यु आकर वो शूल पानी नामक व्यंतर हुआ। उसने विभंग ज्ञान से अपना पूर्व भव और छोड़ा हुआ वृषभ का शरीर देखा। उसे उन निष्ठुर ग्राम्यजनों पर अत्यंत क्रोध आया। उसने उस गांव के लोगों में महामारी उत्पन्न कर दी। लोग रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मरने लगे और उन मृतकों की हड्डियों के ढेर लगने लगे। लोग घबराए और ज्योतिषी आदि से शांति का उपाय पूछने लगे। अनेक प्रकार के उपाय किए, किंतु रोग नहीं मिटा। कई लोग गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए, फिर भी उनका रोग नहीं मिटा। हताश होकर लोग पुनः इसी गांव में आए और सबने मिलकर एक दिन देवों की आराधना करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना सुनकर अंतरिक्ष में रहकर यक्ष बोला, अरे दुष्ट लोगों, अब तुम क्षमा चाहते हो, परंतु उस क्षुधातुर रोगी वृषभ की तुम्हें दया नहीं आई और उसके स्वामी का दिया हुआ धन भी खा गए। वो वृषभ मरकर मैं देव हुआ हूँ और तुमसे उस घोर पाप का बदला ले रहा हूँ। मैं तुम सबको समाप्त करना चाहता हूँ। देव वाणी सुनकर लोग भयभीत हो गए और भूमि पर लौटते हुए बार बार क्षमा मांगने लगे। देव ने पुनः कहा, सुनो, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो जो हड्डियों के ढेर पड़े हैं, उन्हें एकत्रित करके उस पर मेरा भव्य देवालय बनाओ और उसमें मेरी वृषभ रूप मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करते रहो, तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, अन्यथा नहीं। लोगों ने देवाज्ञा शिरोधार्य की और तदनुसार देवालय बनाकर मूर्ति स्थापित की और इंद्र शर्मा ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। अस्थि संचय के कारण इस गांव का अस्थि नाम हुआ। यदि कोई यात्री इस देवालय में रात रहे तो यक्ष उसका जीवन नष्ट कर देता है, पुजारी भी शाम को अपने घर चला जाता है, इसलिए आपको इस देवालय में नहीं रहना चाहिए। लोगों ने भगवान को दूसरा स्थान बताया, किंतु प्रभु ने दूसरे स्थान पर रहना अस्वीकार कर यक्षायतन की ही याचना की। अनुमति प्राप्त करके प्रभु यक्षायतन के एक कोने में प्रतिमा धारण करके ध्यानस्थ हो गए। इंद्र शर्मा पुजारी ने धूप दीप करने के बाद अन्य यात्रियों को हटा दिया और भगवान से कहा, महात्मन, अब आप भी यहाँ से किसी अन्यत्र स्थान चले जाइए। यह देव बड़ा क्रूर है, जो यहाँ रात रहता है वो जीवित नहीं रहता। प्रभु तो ध्यानस्थ थे। पुजारी अपनी बात उपेक्षित जानकर चला गया। यक्ष ने विचार किया, यह कोई गर्विष्ठ मनुष्य है। गांव के लोगों ने और पुजारी ने बार बार समझाया, परंतु यह अपने घमंड में ही चूर रहा। ठीक है, अब मेरी शक्ति भी देख ले। व्यंतर ने अट्टहास किया, भयंकर रौद्रहास्य से दिशाएं गुंज उठी जैसे आकाश फट पड़ा हो और नक्षत्र मंडल टूट पड़ा हो। ग्राम्यजन कांप उठे, उन्हें विश्वास हो गया कि वह मुनि यक्ष के कोप का पात्र बनकर मारा गया होगा। यक्ष का अट्टहास भी व्यर्थ गया, भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रथम प्रयोग व्यर्थ जाने पर यक्ष ने एकमत गजेंद्र का रूप धारण कर प्रभु को पांवों से रोंदा और दांतों से ठोककर असह्य वेदना उत्पन्न की। फिर एक विशाल पिशाच का रूप धारण कर भगवान के शरीर को नोचा। तत्पश्चात भयंकर विषधर का रूप धरकर भगवान के शरीर को आटे लगाकर कसा और मस्तक, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, पीठ, नख और शिशन पर डसकर घोर असह्य वेदना उत्पन्न की। फिर भी प्रभु अडिग एवं ध्यान मग्न ही रहे। यक्ष थका, उसे विचार हुआ कि यह तो कोई महान आत्मा है। उपयोग लगाने पर भगवान की भव्यता ज्ञात हुई। इतने में सिद्धार्थ देव, जिसे शक्रेंद्र ने भगवान की सेवा के लिए नियुक्त किया था, कहीं से आया और शूलपाणी को फटकारा, हे दुर्मती, उन्हें यह क्या किया? ये होने वाले तीर्थंकर भगवान हैं, इनकी घोरतम आशातना से तू महापापी तो हुआ ही है, साथ ही शक्रेंद्र के कोप का भाजन भी बना। ये प्रभु तो शांत है, तेरे प्रति इनमें कोई द्वेष नहीं है, परंतु अपनी आत्मा का हित चाहता हो तो भक्तिपूर्वक क्षमा मांग और मिथ्यात्व के विष को उगलकर शुद्ध सम्यक्त्व अंगीकार कर, इसी से तेरा उद्धार होगा। शूलपाणी भगवान के चरणों में गिरा, बार बार क्षमा मांगी और अपने सभी पापों का पश्चाताप कर सम्यक्त्वी बना। प्रभु का यह घोर उपसर्ग दूर हुआ। इस प्रकार अन्याय करने वाले, न्याय का मौन समर्थन देने वाले भी दंड के भागी होते हैं। अतः अपने स्वार्थ और झूठी इज्जत को बचाने के लिए गलत कार्यों में हाँ जी कहकर पाप के भागीदार मत बनिए। सत्य पथ पर अकेले भी चलो तो जीत आपकी ही है। सत्यमेव जयते। धर्म प्रभावना एस्टरिस्क साध्वी रत्ना श्री संवेग श्री जी महाराज साहब के 14 की तपस्या, श्रीमती ज्योति जी संत कुमार जी जैन के 31 की, तेला लक्षित जी जैन। बेला पूजा जी जैन, उपवास संजीव नीरू जी जैन, आयंबल रूपा जी जैन, एकसना विनय जी जैन के हैं। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।